सदावर्ती कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना, तो उड़ती कला के दो पंख कौन से हैं? उड़ती कला के और याद और सेवा और दो पंख हिम्मत तीन हो गए। उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना, तो उड़ती कला के दो पंख कौन से हैं? किसने कहा ज्ञान और योग? बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के साथ साथ हिम्मत और उमंग उत्साह। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इसलिए गाया हुआ भी है। क्या गाया है हिम्मत के लिए? हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता है। क्यों? उमंग उत्साह की क्या जरूरत है जीवन में? क्यों जरूरत है संसार में? एंथुसियाज्म, एक किताब है एंथुसियाज्म मेक्स द डिफरेंस, टेल कार्टन की। क्यों जरूरत है उमंग उत्साह का? उमंग उत्साह होगा तो कार्य सहज हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आउटलुक चेंज हो जाएगा, रुचि होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा करने के लिए। उमंग होगा तो थकावट महसूस नहीं होगी, समय पर कार्य या समय से पहले हो जाएगा और खुशी रहेगी, बहुत ज्यादा खुशी रहेगी। अगर उमंग उत्साह है तो
दूसरों का भी बढ़ाएंगे।
उमंग उत्साह कंटेजियस संक्रमक होती है, जैसे बीमारी होती है ना संक्रमक, एक से दूसरे तक फैलती है, छींकने से फैलते है कुछ कुछ बीमारी, तो यह भी संक्रमक है। इसका संक्रमण ऐसा है कि सब जगह फैलता है। एक यदि उमंग उत्साह में है तो सबको उमंग उत्साह आ जाता है। तो जहां उमंग उत्साह नहीं होता वहां थकावट बहुत ज्यादा होगी, और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होगा। कल के दो पुरुषार्थियों में ये कौन से नंबर का है? वो पुरुषार्थी जो कभी थकान नहीं होती उसको, वो क्या सोचते हैं कि बाप हमको चला रहा है, बाप दादा हमें चला रहा है, संकल्प में भी सदैव सरेंडर। तो जो ऐसे सरेंडर है, जो स्नेह की गोदी में है और जो स्नेह के झूले में है और जो स्नेह के पाव से चलते हैं और जिनको देखकर भाग्य की स्मरण आता है, भाग्य की महसूसता होती है, त्याग की महसूसता नहीं होती, ऐसे जो है उनको कभी थकान नहीं होती, उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेहनत की लकीर है उधर, है मेहनत की लकीर, यहाँ है प्राप्ति की लकीर, यहाँ है स्नेह की गोद, यहाँ है मोहब्बत में मस्त, उधर है मेहनत। तो उमंग उत्साह जहाँ है वहां पर कभी थकावट बहुत ज्यादा नहीं है तो थकावट बहुत ज्यादा होगी, और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होगा। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसी आधार पर सदावर्ती कला का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान समय के अनुसार उर्ती कला के सिवा मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ है एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं सारे कल्प की है। पुरुषार्थ है एक जन्म का और प्राप्ति सारे कल्प की, एक का लाभ होना जो और यथार्थ पुरुषार्थी है वो सोचते हैं कि बाबा ने किसके लिए कहा है, भविष्य के लिए, परंतु ये उनकी भ्रांति है। बाबा कहते हैं ये वर्तमान के लिए है। यथार्थ पुरुषार्थी होता पुरुषार्थ करते करते ही प्रारब्ध की अनुभूति, प्राप्तियों की अनुभूति, खुशी, आंतरिक सुख और शक्ति की अनुभूति, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, भविष्य के दिलासे में रहने वाले नहीं, भविष्य के दिलासे में चलने वाले नहीं, भविष्य के फल के उम्मीदवार नहीं, अभी प्रत्यक्ष फल खाने वाले, अभी अभी किया और अभी अभी इंस्टेंट इंस्टेंट हैप्पीनेस, अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं है परंतु पुरुषार्थ करने में ही इतना आनंद है, मार्ग में ही इतनी खुशी है, मार्ग में ही आंतरिक सुख और शक्ति का अनुभव हो रहा है। जो जो गायन भविष्य के लिए नहीं है, अभी के लिए है, एक का लाख गुना भी नहीं, अनगिनत। बीज तुम्हारे हाथ में है तो फल भी तुम्हारे पास है, परंतु बच्चे दो दो लड्डू रखते हैं, एक में बीज और एक में वो चीज जो कि छोड़नी चाहिए, जो कि विस्तार है, जो कि सार नहीं है, इसके लिए ये खिसक जाता है और फिर खाली खाली और फिर थकावट और फिर प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता, इसके लिए त्याग की महसूसता होती है, दूसरों को भाग्य की महसूसता नहीं होती। तो तुम्हारे चेहरे से क्या दिखाई दे, भाग्य, त्याग नहीं भाग्य दिखाई दे। तो पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प की है। एक जन्म के लिए तुम कहते हो अभी कि बाप आप हमारे हो, और बाप भी क्या कहता है, फिर मन से, वाचा से और कर्मणा से अनुभव कराता है कि मैं भी तुम्हारा हूं, सारे संगम युग की जीवन में तुम्हारा हूं। बाप भी ये मन वचन कर्म से अनुभव कराते हैं। द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो ना, सारे कल्प की, द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो, तुम सबसे बड़े आसामी हो, में तुम्हारा नाम है, कल्प कल्प के तकदीरवान तुम हो, सारे कल्प में, वो तो आज हु में है, कल साधारण प्रजा में है, तुम सदैव हो, कल्प कल्प के पूज्य, आधा कल्प चैतन्य में और फिर आधा कल्प जड़ की पूजा होती है तुम्हारी। तो द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो ना, एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्मों की प्राप्ति, मेहनत एक जन्म की, मेहनत कहेंगे उसको या मोहब्बत में मस्त है, मोहब्बत की मेहनत, मोहब्बत और मेहनत विरोधाभास है, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत कहती या है नहीं,
मोहब्बत में बदल,
मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है, पर मोहब्बत की मेहनत क्या होती है,
मोहब्बत में सावधान,
सावधान अलग चीज, मेहनत मेहनत अर्थात परिश्रम, श्रम है पर लगती नहीं है। पाव जो है वो स्नेह के पाव है, उधर मेहनत के पाव से नहीं चल रहे, चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं, और चलना भी नहीं उड़ना भी नहीं, वो गोद में है, वो स्नेह की गोद है और स्नेह का झूला है और स्नेह के पाव है और मोहब्बत की गोद है। तो वहां तो चलना भी नहीं है, उड़ना भी नहीं, वो बैठे हैं उसके ऊपर। तो द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो, एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्मों की प्राप्ति। तो कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो, बाबा कह रहे हैं ये भी चेक करो, केवल पुरुषार्थ कर रहे नहीं, किस गति से कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे नहीं, किस गति से कदम बढ़ा रहे, वो चेक करो। अभी साधारण चेकिंग नहीं, महीन चेकिंग करो। आज बाबा ने कहा महान सौभाग्यशाली वो है जो जो है जो बाप की याद में रहते, जिनकी बुद्धि में पुराना कीचड़ पट्टन पट्टी नहीं है, वो तो बस ये कहते हैं जो हूं, जैसी हूं, कानी हूं, ऐसी हूं, वैसी हूं, तैसी हूं, बाप की हूं, अच्छी मूल्य में ऐसा है।
लेकिन अच्छे तो बनो ना बाबा,
बोलो जिनकी बुद्धि में पतितों से क्या दिल लगाना, आज की मूल्य में वाक्य है, पतितों से क्या दिल लगाना, हड्डी प्यार की रग नहीं होनी चाहिए तुम्हारी किसी से भी, किसी से भी हड्डी प्यार की रद नहीं होनी चाहिए। किससे क्या दिल लगाना, पुरानी किचड़ पट्टी से क्या मोह रखना। तो कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो, ऐसा तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो केवल। दो पुरुषार्थियों में से बाबा को कौन पसंद है, जो तीव्र है, इंटेंस एफर्ट मेकर्स। जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकते। समय की पहचान माया मूर्छित कर देती है तो जंत्र मंत्र को याद करो। कौन सा जंत्र मंत्र, ये स्थान कौन सा है, वो घड़ी कौन सी थी, वो दिन कौन सा था, वो वरदान कौन से थे, ये था, ये है जंत्र मंत्र। इसको याद करो तो माया मूर्छित। कौन सा वरदान, अथक भव सफलता मूर्त भव अमर भव संगम युग को ही वरदान है। कौन सा संगम युग को वरदादाई आपका हो गया। इस समय बाप तुम्हारी मुट्ठी में है, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में। ये तुमको नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं आज की मुरली में है। पर कई बच्चों को ये नशा रहता ही नहीं, कोई विरला ही होगा जिसको ये नशा रहता है आज कि भगवान पढ़ाते है। नशे पानी पता नहीं क्या हो गया, नशा नम हो गया, नशा चढ़ना बंद हो गया। पहले पहले चढ़ा था जब आए थे, जब भगवान के बने थे तब बहुत उम्र उठता था क्या करूं और क्या नहीं। मुरली सुनने के बाद पता नहीं क्या करूं और क्या नहीं, अभी किसको किसको ज्ञान सुनाऊं, इतना नशा। तो दीवार मिले तो सर फोड़ दे, मतलब ऐसा नशा था दीवार को हिला दे। पर अभी पता नहीं क्या हो गया। कहते हैं ना हम जब आए थे तो तुम्हारे जैसा ही नशा था, बहुत ऐसे ही हम भी पुरुषार्थ करते थे। अरे अभी क्या हुआ, अभी क्यों नहीं करते, एक जमाना था तब तक बहुत करते थे, बहुत नशा था, बहुत सब कुछ करते थे, बहुत। अभी पता नहीं कहां खो गया वो नशा, डल हो गया, कुछ तो हो गया कि जिससे नशा गुम हो गया। हाँ ये तुम नए नए हो ना, इसके लिए ऐसा है। हम जब थे तो अरे हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, हम तो रात रात भर भट्टी करते थे, फिर हमारा अव्यक्त वाणियां पढ़ते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे। अब क्या हुआ, तपस्या जो की उसका। जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकते। समय की पहचान, कौन सा समय चालू है इसकी पहचान, ये बोला हुआ है। समय का महत्व सदा याद रखो, जितना अमृत वेले का महत्व रखोगे उतना महान बनेंगे। अमृत वेला स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक लगाओ, तिलक विजय की निशानी है। तो समय का महत्व, सारा संगम युग ही अमृत वेला है, कभी भी कर लो नहीं अभी तो संपूर्ण संगम युग ही अमृत वेला है, सृष्टि का अमृत वेला है। वो सृष्टि का अमृत वेला है जो घनघोर रात और जितनी अंधकार में रात हो उतना ही सवेरा आएगा, प्रकाश उतना ही सुखदायी होगा। तो इस बीच में इस समय हम यहाँ है, अभी बस 12 बजने को 5 ही मिनट बाकी है, तो वहां हम है नहीं, परंतु जितना इसका महत्व रखेंगे इस अमृत वेले का उतना ही महान बनेंगे। तो याद रहे ये समय कौन सा है। आज बाबा ने कहा झगमुई झगमुई बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, हमारा टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो बिना सिवाय ज्ञान योग के। जो भी हम चीज करें उसमें ज्ञान हो, योग हो, या तो विश्व कल्याण हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है विश्व परिवर्तन। कल कहा था दूसरा बाकी सारे कर्तव्य निमित्त है, मुख्य मूल कर्तव्य ये है तुम्हारा, बाकी कुछ नहीं। ये एक ही कार्य के लिए हम आए हैं, इस एक कार्य को छोड़ के और जो भी कार्य है गौण है इसके आगे, मुख्य एक ही कार्य है हमारा। तो समय की पहचान, निरंतर स्वयं को याद दिलाना कौन सा समय है, कौन सा समय है, ये समय कौन सा है। समय का महत्व सदा याद रखो। ऐसे कभी नहीं सोचो कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ऐसे कभी सोचा था कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे? सोचा नहीं था, लेकिन अनुभव कर लिया। तो क्या सुना? मूर्ति कला के लिए क्या चाहिए? सदा मूर्ति कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? सदा ही हम ऊपर रहे, नीचे आना ही नहीं है, नीचे आना ही नहीं है, यह निरंतर याद रखना। कोई भी संकल्प, ऐसे जो जो संकल्प है जो हमको नीचे लाते, एक तो विकार के संकल्प है, वो तो सीधा गिराते हैं, नीचे नहीं लाते हैं वो तो उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। यहां चल रही है निगेटिव संकल्प, साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प। कल मूल्य की शुरुआत में क्या थी? अंतिम स्थिति कौन सी है? विकर्माजीत में भी विकल्प मुक्त और व्यर्थ मुक्त। यह हमारी अंतिम स्टेज है कि जिसमें व्यर्थातीत हो गए हैं, व्यर्थ मुक्त है, विकल्पातीत, विकल्प मुक्त। तो चेक करो, महीन चेकिंग करो कि कोई भी व्यर्थ वहां ना आए जो हमको अपनी स्थिति से नीचे गिराए, क्योंकि नुकसान किसका है? फिर नीचे आने के बाद फिर पुरुषार्थ चालू करो ऊपर जाने का, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऐसे कार्य क्यों करें कि जिससे हम नीचे आए, नीचे आना ही नहीं है, और सदैव ऊपर रहने के लिए सदैव ज्ञान का ही श्रेष्ठ चिंतन करना है। जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में है उतना हम नीचे आ ही नहीं सकते। ज्ञान जब बुद्धि से जाता है बाहर तो ही नीचे आने की प्रक्रिया चालू होती है। पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, तीन दिन चार दिन पहले मुरली में था ना उसका भी पुरुषार्थ, उसका ही एक्चुअली पुरुषार्थ है। वैसे देखा जाए तो पावन तो हम है ही, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं पतित बनने का। तो पंख चाहिए, कौन से पंख चाहिए? ज्ञान और योग, उमंग उत्साह के, हिम्मत और उमंग उत्साह के। ये पंखों को किसने काट दिया है? अभी इसके ऊपर जरा रिसर्च करो, कौन है जिसने इस पंख को काट दिया है कि उमंग ही नहीं आता? खुद के संकल्प के जाल में ही हम फंसते हैं, स्वयं ही हम क्रिएट करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, फिर उसमें फंसते और फिर चिल्लाते हैं जोर जोर से, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, और फिर छूटते भी है, छूटकर बाहर भी आते हैं, परंतु ये अनुभव भूल जाते हैं कि मैं ही फंसा था, और कुछ समय के बाद चलने के बाद फिर वापस नया जाल क्रिएट करते हैं, फिर उसमें फंसते और फिर उससे बाहर निकलते हैं। तो ये अनवरत नॉन स्टॉप चालू रहता है, किसी का दस दस दिन में, किसी का एक एक महीने में, किसी का दो दो मास में। खुद ही क्रिएट करो, खुद ही उसमें फंसो, खुद ही दो तीन दिन लगाओ उसमें निकलने में, और फिर बाहर निकलो, और फिर पुरुषार्थ। तो इसमें तो टाइम जा रहा है ना। तो उमंग और उत्साह, अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे जैसे चाहो कर सकते हो। बाप सर्वेंट के रूप में बंधा हुआ है, जो चाहो जैसे चाहो जब चाहो, क्योंकि बीज तुम्हारे हाथ में है, वरदाता तुम्हारा हो गया है। उसने भी कह दिया, तुमने कहा हम तुम्हारे, तो उसने भी कहा मैं तुम्हारा हूं। हुजूर जिसकी बुद्धि में है वहां पर एक सेकंड में शक्तियां, सर्व प्राप्ति, सर्व फल हाजिर है। जी हजूर है, चुंबक की तरह आकर्षित होकर आ जाती है वहां पर सब कुछ। अगर बाप बुद्धि में हाजिर है तो, अगर बाप बुद्धि में गैर हाजिर है तो तो शक्तियां प्राप्तियां ये भी गैर हाजिर हो जाएगी। बुद्धि से बाप खिसक गया, क्या कहते हैं बाबा, बहुत ही कौन सी चीज है हमेशा मुरली में आते हैं? नहीं नहीं, नहीं कौन सी चीज है? चीज चीज सरकनी, खिसक ही नहीं, नहीं कुछ दूसरा कहते हैं, तरावट एक शब्द कहते हैं बाबा ना। हाँ बाबा कहते हैं बाप एक ऐसी चीज है जो दूसरा है, बाप एक तरावट मुरलियों में आता है, बाप एक ऐसी चीज है ना? नहीं वो तो बाबा तवाई इसके लिए कहते हैं कि गिली वो याद करना। चलो तो बाप ऐसी चीज है कि अभी भी है और अभी भी गायब, तो उसके लिए क्या कहेंगे, करेंगे उमंग उत्साह। इसलिए गाया हुआ है हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जहां उमंग उत्साह नहीं वहां थकावट बहुत ज्यादा, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता है। तो हर कार्य उमंग उत्साह से करना है। एक है उमंग उत्साह से करना, पर उसके बाद में भी उससे डिटैच भी रहना है, वो कार्य और कार्य का परिणाम भी हमको टच ना करे, वो भी याद रखना है। एक तरफ ऐसा भी नहीं कि नीरस हो जाए, इंटरेस्ट ही नहीं रहे कार्य में, कार्य करना है और बहुत उमंग उत्साह और समर्पण भाव से करना है, परंतु वो होते ही उसको समर्पित कर देना है, उसके परिणाम को भी समर्पित कर देना। संकल्प में भी सरेंडर, कल क्या कहा था, संकल्प में भी सरेंडर। पांच प्रकार, सात प्रकार के समर्पण है। पहला तन, तन बाबा को दे दिया तो फिर ये हमारा नहीं रहा, अब इसके जो भोग विलास है उसके लिए ये शरीर नहीं है, हमने उसको दे दिया तो ये शरीर उसके सेवा के लिए, उसके यज्ञ के लिए। तन, फिर मन, मन में संकल्प का भी भोग उसको समर्पित। तन मन धन, जो धन है वो धन भी उसके लिए, और जिसके पास नहीं है वो बचत, जो यहां रहते हैं उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि बचत करना, पानी की, बिजली की, सब चीजों की। तन मन धन, बुद्धि, बुद्धि का समर्पण। चौथा संबंध संपर्क, वो भी समर्पित कर दिए तो वो दिव्य बन जाएंगे, उसमें अलौकिकता आ जाएंगी, उसमें मोह की रगे नहीं रहेगी, फिर उसमें वो जो घनिष्ठता है और वो फैमिलियरिटी जो है और जो लौकिकता है वो समाप्त हो जाएगी। संबंध संपर्क, संस्कार, छठवा संस्कार, और सातवा कर्म और कर्म के परिणाम, ये समर्पण है, इन सब चीजों का समर्पण। संकल्प में भी सरेंडर, ये सबसे श्रेष्ठ है उसमें, संकल्पों का सरेंडर। तन मन धन बुद्धि संस्कार संबंध संपर्क और कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम का समर्पण उस कर्म के समर्पण से भी सूक्ष्म है, क्योंकि कर्म के जो परिणाम होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, कभी खुशी भी हो सकती, कभी कुछ भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, उसके लिए भी स्वीकार करना उस चीज को। निष्काम किया, कर्म तो किया था निष्काम, परंतु जो परिणाम आया वो भी हमको प्रभावित ना करे, क्योंकि हमने जो सोचा नहीं था कि वो हो गया, किसी की बहुत हमने सेवा की और उसने कुछ उल्टा ही कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये परिणाम होगा परंतु हुआ, तो उसको भी फिर बाप को समर्पित कर देना, तो वो उससे भी सूक्ष्म है। तो ये सात प्रकार के समर्पण है। फिर बाबा यहाँ पर उमंग उत्साह होती कला द्वापर में भी पूछे, समय की पहचान वो हमने देख लिया, अभी आगे, अभी क्या विशेषता करेंगे, प्रदर्शनी और मेला करेंगे। कल क्या कहा कलकत्ता वालों को, नया करके दिखाओ, भक्ति में है बलि, यहाँ महाबलि, वहां है भक्ति का फोर्स, यहाँ है ज्ञान का फोर्स, तो कुछ नया करके दिखाओ। प्रदर्शनी और मेला करेंगे, मेला तो कॉमन हो गया, नया क्या करेंगे, जो किया जितना किया वो अच्छा किया, लेकिन अभी कोई पावरफुल माइक निकालो, क्या करो पावरफुल माइक निकालो, क्योंकि अभी थोड़े समय में तैयारी ज्यादा करनी है, तो माइक चाहिए ना जो आपकी तरफ से एक अनेकों को संदेश दे। आप कब तक अपना परिचय देते रहेंगे, अभी दूसरे आपका परिचय दे, हम अपना ही परिचय देते रहेंगे क्या लास्ट तक, तो कहते हैं अब दूसरे आपका परिचय दे। माताएं ऐसी माताएं निकालो, हम तो बन गए पर अभी आप जैसा बनाओ दूसरों को, ठीक है ना। ऐसी बहुत माताएं जिनका आवाज बुलंद हो सकता है संसार में, ऐसी बहुत है। माइक का अर्थ ही है जिसका आवाज बुलंद हो, कल भी कहा था ना वहीं पर कलकत्ता वालों को, आवाज बुलंद नहीं कुछ और शब्द था, बुलंद हो, मेहनत कम और फल ज्यादा निकालो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड है, अर्थात सदा हर कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं, हम बाप के राइट हैंड है। ब्राह्मण आत्मा है, डायरेक्ट बीच से निकले हुए तना स्वरूप आत्मा है, ट्रंक, तना अर्थात ट्रंक स्वरूप, ट्रंक कहते हैं इंग्लिश में, तो डायरेक्ट बीच से निकले हुए तना स्वरूप आत्मा है, डायरेक्ट बाप के राइट हैंड है, सदा हर कार्य में सहयोगी। तो राइट हैंड तो कमाल करेगा ना, तो ये माताओं से बात की। फिर बाबा बात कह रहे, अच्छा कुमारिया भी आई हुई है, कुमारिया कमाल का प्लान बना रही हो या अपने को छोटी समझती हो, क्या कमाल करेगी? सबसे बड़े से बड़े, सबसे बड़े से बड़े को ऐसे समझो जो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ, आप बड़ी हो जाए वो छोटे हो जाए। अच्छा, कुमारियों की जीवन श्रेष्ठ हो गई, बाबा को कुमार और कुमारिया बहुत प्रिय है, पर कुमारिया भी कुसंग में चली जाती है, कुछ दिन पहले मुरली में था ना, परसों ही था, कुसंग में चली जाती है, तो कुमारियों पर बहुत बड़ा आधार है, कुमारियों की जीवन श्रेष्ठ हो गई है, अपने को भाग्यवान समझती हो ना। अच्छा, तो यहाँ पर बाबा ने माताओं से बात की और कुमारियों से बात की। जगदीश भाई का एक क्लास है, मैं कल भी बता रहा था, श्रेष्ठ ब्रह्मा को, आदर्श ब्रह्मा कुमारी के लक्षण, बहुत सुंदर क्लास है, आदर्श ब्रह्मा कुमारी के लक्षण, एक घंटे का क्लास है, सभी के लिए है, केवल कुमारियों के लिए नहीं, कुमार और कुमारी दोनों के लिए है। हाँ, पर वहां पर ज्यादा मतलब ज्ञान सुनाने की बात के ऊपर ज्यादा भर दिया होगा कि सबको ज्ञान सुनाना ही है, उसमें उन्होंने खुद का अनुभव सुनाया है, बर्मा का और इंडोनेशिया का, बहुत सुंदर, सबने सुना होगा, बहुत अच्छा अनुभव है कि कैसे वो इंडोनेशिया में चले गए और फिर वहां कोई था नहीं पहचान का, रहने का कुछ पता नहीं, कोई सेंटर नहीं वहां पर, परंतु एक था कि ज्ञान तो सुनाना है, किसको सुना है, रहेंगे कहां, वहां से एयरपोर्ट के बाहर गए, वहां से एक जगह फोन लगाया एम्बेसी में, वहां पे भी दूसरी भाषा का था, इंग्लिश में कुछ था नहीं, तो एक जगह फोन लगा, फिर एक सरदार जी ने उधर से बात किया बहुत ही कर्कश आवाज में, कौन है ऐसे बहुत चिल्लाया पहले, उसको लगा शायद कोई दूसरा व्यक्ति होगा, और क्योंकि अभी तो टाइम हो गया है, ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए, बाद में किसका फोन आया पूछा, तो उसने, उन्होंने फिर बताया कि मैं बाहर देश से आया हूँ, तो फिर बोला ठीक है, उसने एक एड्रेस फोन नंबर दिया, फिर उन्होंने फोन वहां गए, फिर वहां सत्संग किया, फिर वहां बहुत सारे लोग आए, फिर वो जो सरदार जी था वो भी आया, वो कहते मैं बहुत, मुझे बहुत दुख है, मुझे पता नहीं था आप तो बहुत महान व्यक्ति हो, वो क्षमा मांगता है उससे, मुझे लगता है, मुझे लगा था कि मैं पहले फोन नहीं उठा रहा था, वो फोन बज रहा था पर मुझे लगा कि शायद किसी का फोन होगा, जो कि अभी तो टाइम हो गया है, तो बहुत अच्छा उसने वर्णन किया है उन्होंने, और फिर कैसे ऐसी अनजान स्थान कि जहां पर कुछ भी नहीं है, ना सेंटर है, ना कुछ है, ना कुछ है, वहां पर कैसे उन्होंने सेवा आरंभ की, वहां पर ज्ञान देने का यदि संकल्प है तो बाबा मदद करेगा ही, केवल हमको ये रहना चाहिए। तो उन्होंने उसमें वही कहा है कि ब्रह्मा कुमारी अर्थात जब तक ज्ञान ना दे किसी को तब तक भोजन नहीं, जैसे कि ज्ञान देना मतलब क्या है, स्नान करने जैसा है, अगर स्नान नहीं करते तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे अगर ज्ञान नहीं दिए तो भोजन भी नहीं। वैसे उन्होंने बर्मा के बारे में भी कहा, बर्मा जाना नहीं था पर वहां चले गए, फिर वहां पे ढूंढा कोई स्थान, कोई धर्म, धर्मशाला जहां वो रहे, फिर एक जगह गए, फिर वहां रहे, तो उन्होंने कहा आपका भोजन, हम आपके लिए भोजन बना देते, तो उसने कहा नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, तो बोले क्यों भोजन नहीं करेंगे, तो क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि मैंने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया आज, इसके लिए मैं भोजन नहीं करूंगा, तो नहीं उन्होंने ज्ञान तो नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं धर्म उपदेश नहीं किया किसी को आज, तो वो जो व्यक्ति था होटल वाला उसको बड़ा बुरा लगा, मतलब अंदर ही उसको फील हुआ, वो कहा, उसने कहा मैं अभी आता हूँ, फिर वो गया और उसने कहा कि आज का तो आप खा लो, कल हम, मैंने आपके लिए अरेंजमेंट कर दिया है, कल कई लोग आ जाएंगे 9 बजे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:10 बज गए, तो अभी कौन आएगा, तो उसने कहा नहीं कल मैं 2 बार भोजन करूंगा, क्योंकि पर मैंने आज किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, इसके लिए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, तो उसको और ही ज्यादा फील हुआ, तो उसने कहा ठीक है मैं अभी वापस आता हूँ, फिर गया और फिर ढूंढा 2-3 लोग, तो तब तक वो बाहर गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रूम से बाहर निकला और देखा कहीं 4 लोग एक हलवाई की दुकान में बात कर रहे थे, तो उनको लगा कि अंदर से एक आवाज आ रही है, इनके पास जाओ, 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 जाओ कि नहीं जाओ, जाओ कि नहीं जाओ, पर अंदर से आवाज आ रही है इनके पास, अगर गया तो लोग क्या कहेंगे, देखा हमको तो बोलता है बाहर का नहीं खाते और खुद खा रहे हैं। और यहां भी ऐसे भी हो कि मैं उनसे खा लिया और उसके बाद में मैं लेन देन कर रहा हूं, उसके लिए खड़ा हूं, पर फिर अंदर से आवाज है इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। तो वो उनके पास जाता है, वो चार लोग कहते हैं हम सोच रहे थे आप कौन है, शायद ऐसा लग रहा था आप कोई बहुत बड़े साहित्यकार है, कोई लेखक है, क्योंकि उन्होंने नेहरू शर्ट और वो पहन रखा था। दूसरा कहता है, दूसरा सोच रहा था मैं ये सोच रहा था कि आप कोई शायद धर्मोपदेशक है, तीसरा ये सोच रहा था कि मैं शायद ये सोच रहा था कि आप कोई कवि है, कोई कोई नेता है, कोई राजनेता है, तो आप हम सुनना चाहते हैं। तो वहीं से वो सत्संग चालू होता है, तो वही उनको सुनाता है। फिर दूसरे दिन और बहुत सारे लोग आते हैं, फिर उनको सुना, मतलब उन्होंने उसमें यही कहा है कि अगर हमको सुनाने की इच्छा है ज्ञान, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात जनेऊ पहनना पहनाना, यज्ञ करना कराना, दान करना कराना, लेना और देना, तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक दिन भी बिना ज्ञान सुनाए ना जाए, अगर कोई भी ना मिले तो दीवार को सुनाओ, पड़ोसी बच्चे या स्वयं को सुनाओ या दीवार को सुनाओ,
बिंदु देखो उनको
सुनाओ। ब्रह्मा कुमारी तो ये श्रेष्ठ बहुत सुंदर है, ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड, ब्रह्मा कुमारी अर्थात निरंतर ज्ञान सुनाने वाली, ब्रह्मा कुमारी अर्थात स्वयं को अवतरित आत्मा समझने वाली, अभी अभी ब्रह्म से आई है, ब्रह्म से शिव बाबा बधा रहे, जैसे वो आया वैसे हम भी अवतरित है, तो ये उन्होंने कहा है। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, कुमारियों के जीवन श्रेष्ठ हो गई, अपने आप को भाग्यवान समझती होना।